नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से अप करो सीजोगे। हमारा आज का विषय है राजनीति का आयाराम और आज की राजनीति। चुनाव लड़ने के लिए नेता जिस तरीके से दल बदल का खेल करते हैं, जिसमें जनता, लोकतंत्र, विचारधारा, राजनीतिक वफादारी जैसे शब्द अपनी महत्ता खोते देख रहे हैं। नेताओं द्वारा ऐसे करने के केवल शब्द का ही नहीं, लोकतंत्र की भावना भी अपने वास्तविक अर्थ को खत्म होता जा रहा है। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन से संचालित होती है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल से स्वागत
जी
करता।
जी नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, राजनीतिक आयाराम का दौर और विचारों की राजनीति पर कितना सही देखते हैं वर्तमान परिवेश सर?
देखिए कि राजनीति का भविष्य पहले भी था, आज भी है और आने वाली सदियों तक रहेगा। अगर राजनीति से विचार को हटा दिया जाए तो राजनीति शून्य हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। राजनीति का मतलब ही होता है न्याय से लड़ना, अन्याय के लिए लड़ना और अन्याय का प्रतिकार करना। तो राम मनोहर कहते थे कि राजनीति का मतलब है धर्म, दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। और राजनीति का मतलब है समाज में शुचिता को स्थापित करना, समाज से अन्याय का प्रतिकार करना। परंतु आज के दौर की जो राजनीति चल रही है और जो नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, यह विचारों की राजनीति न कर करके यह सत्ता और कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। और जब राजनीति के केंद्र में सत्ता और कुर्सी आ जाएगी, सत्ता का मोह आ जाएगा, पद का मोह आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे वहां पे मन से विचार समाप्त होंगे। और मन से विचार इसलिए समाप्त होते हैं कि वह अपनी कुर्सी और सत्ता की तलाश में रहते हैं कि हमें कहां से कुर्सी मिल जाए, कहां से सत्ता मिल जाए, कहां से मुनाफा हो जाए। तो आज जो लोग ये मुनाफा और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए विचारों की राजनीति का मतलब नहीं रह गया है। परंतु जो लोग विचारों की राजनीति को महत्व देते हैं, जो लोग राजनीति से समाज में समता की स्थापना करना चाहते हैं, जो लोग राजनीति के माध्यम से संविधान को समाज में लागू करवाना चाहते हैं, जो लोग राजनीति के माध्यम से समाज में समाजवाद और समाज में बराबरी के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए आज भी राजनीति में विचारधारा ही केंद्र बिंदु है और विचार के आधार पर ही वो विकल्प तैयार करने की बात कर रहे हैं। आयाराम का जो कंसेप्ट है और गायाराम का जो कंसेप्ट है, पहले यह कंसेप्ट बड़ा छोटे स्तर पे होता था, परंतु आज यह जो कंसेप्ट है, आज यह जो संकल्पना है, अब तो आयाराम और गायाराम से आगे बढ़ गए है। अब तो आया सरकार और गया सरकार की कल्पना हो गई है। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जब पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार थी तो उनके सरकार को गिरा दिया गया और लोगों को, विधायकों को खरीद लिया गया। यही काम महाराष्ट्र में हुआ कि वहां की चलती फिरती चल रही सरकार को गिरा दिया गया और वहां के विधायकों को खरीद लिया गया। तो अब तो विधायक अपने आप को बेच रहे और सरकार जो विपक्ष में बैठ रही वो विधायकों को खरीद करके सरकार बना रही। तो इसके माध्यम से जो सरकारें बनेगी वह देश हित में नहीं बनेगी बल्कि अपने हित में बनेगी, अपने लोगों के हित में बनेगी। तो आयाराम और गायाराम का जो राजनीतिक संकल्पना है उसे आज बढ़ावा देने का काम लगभग लगभग सभी राजनीतिक दल कर रहे, और वो इसलिए बढ़ावा दे रहे कि आम जनता, आम मतदाता उसका समर्थन कर रहे। अगर मतदाता एक बार इरादा बना करके दल बदलुओं को हरा देती तो दल बदलू सुधर जाते, परंतु मतदाता भी तो अपना समर्थन देकर के उनपे ठप्पा लगा दे रहे कि नहीं नहीं आप जो किए अच्छा किए, जबकि यह समाज के लिए कैंसर से भयानक रोग की तरह है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजनीति के अंदर और राजनीति के केंद्र में विचार को रखा जाए, विचारधारा को रखा जाए, सिद्धांत को रखा जाए, तब जाकर के राजनीति सही स्तर पर हो सकती है और आम जनता के लिए होगी।
जी सर, सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने विचारधाराओं पर कितना सही तरीके से अमल में ला रहे हैं राजनीति में सर, वर्तमान परिवेश में?
वर्तमान परिवेश में आप देखिए योगेश भाई कि चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष वाले हो, इनके केंद्र में विचारधारा है ही नहीं, इनके केंद्र में राजनीति भी नहीं है, इनके केंद्र में तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाव का खेल है। और उसके लिए यह दिन रात 24 घंटा गणित गुणा करते रहते हैं। इन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जिताऊ प्रत्याशी। जिताऊ प्रत्याशी का क्या मतलब है कि उसके चरित्र को नहीं देखा जाएगा, उसके कर्म को नहीं देखा जाएगा, उसके आधार को नहीं देखा जाएगा, मतलब वह जीतने की मद्दा रखता हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे आवारा हो, चाहे जाति को बढ़ावा देने वाला हो, चाहे नफरत फैलाने वाला हो, यदि वह चुनाव जीतने की क्षमता रखता है तो उसे टिकट दे रहे, तो उसमें तो इनके कार्यकर्ता खुद ही मर जा रहे, बाकी कार्यकर्ता कहां जा रहे। तो आज चाहे पक्ष के लोग हो और चाहे विपक्ष के लोग हो, इनको सिद्धांत की राजनीति से मतलब नहीं है। सिद्धांत की राजनीति समाजवादियों में थी कि समाजवादी लोग जब टिकट फाइनल करते थे तो कहते थे कि आपने कौन से काम किए हो, जनता के लिए कितने बार जेल गए हो, आप अपना बायोडाटा लाइए, अगर आप जनता के सवाल पर जेल गए हो तो आपको टिकट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हम लोग रघु जी के अंडर में काम करते हैं, अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है उस पर लेकर के चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम वहीं पे लड़ेंगे जहां पे हमारा आंदोलन है, और हम उन्हीं को टिकट देंगे जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किए, हम दूसरे को टिकट नहीं देंगे। तो ये सिद्धांत की राजनीति हुई। हम सिद्धांत की राजनीति इसलिए होती है, उसको सत्ता से मतलब नहीं होता है। सिद्धांत की राजनीति का मतलब होता है समाज को दिशा देना, समाज को अच्छा नेतृत्व पैदा करना, समाज में संविधान को लागू करना। परंतु आज के नेता और आज के पक्ष और विपक्ष जो राजनीति कर रहे, इनके मूल में कुर्सी है, और जब मूल में कुर्सी आ जाती है, मूल में सत्ता आ जाती है, तो उसमें जनता का काम नहीं होता है। तो आज कुर्सी के लिए जितनी ललायत सत्ता पक्ष के लोग है, उतनी ही ललायत विपक्ष के लोग है। अंतर इनमें कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ इनके सिंबल का है कि किसी का सिंबल अलग है, किसी का सिंबल अलग है, बाकी इनके नीतियों में अंतर नहीं है, इनके नेताओं में अंतर नहीं है, इनके विचार और सिद्धांत में अंतर नहीं है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों नफरत फैला करके सत्ता में आना चाहते है, दोनों सांप्रदायिकता फैला करके सत्ता में आना चाहते है, और दोनों शोषण के माध्यम से पैसे कमा करके चुनाव जीतना चाहते। तो इनके सत्ता और पक्ष में और विपक्ष में दोनों में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, और दोनों विचारधारा की राजनीति न करके बल्कि कुर्सी पाओ और सत्ता पाओ के संकल्पना की राजनीति कर रहे हैं।
सर, किसी खेल में अगर मैदान पे कोई खिलाड़ी उतरते हो और दोनों ही जो दल है वो कहीं ना कहीं किसी की भी जीत पर खुद खुशियां मनाते हैं और पीछे से हाथ मिलाते हैं, तो इस तरीके की जो राजनीति होती है या वर्तमान परिवेश में किस तरह रूप में देखते हैं?
देखिए, राजनीति का मतलब नफरत नहीं होता है। अगर दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो एक जन चुनाव हारेंगे, एक जन चुनाव जीतेंगे, तय है। परंतु चुनाव जीतना राजनीति नहीं होता है। राजनीति का मतलब तो होता है कि आप व्यवस्था को किस प्रकार से ले जाना चाह रहे हैं, आप व्यवस्था को जनता के बीच में किस प्रकार से ले जा रहे हैं। तो जो हमारे प्लेयर है जब मैदान में उतरते हैं तो एक खेल भावना से खेल खेलते हैं, हार जाते हैं तो भी अपने विपक्ष से जाकर के हाथ मिलाते हैं, जीत जाते हैं तो भी अपने विपक्ष से जाकर के हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो नफरत फैलाने का नाम काम नहीं करते। परंतु आज की जो सत्ता है और आज के जो विपक्ष है, यह सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए जो घटिया काम हो कर लेंगे और जो नफरत फैलाना है फैला लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यदि हम नफरत नहीं फैलाएंगे, यदि हम फरका फरकी का बीज समाज में नहीं बोएंगे, असमानता का बीज नहीं बोएंगे, तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं, और कोई आएगा नहीं तो हम राजनीति किस मुद्दे पे करेंगे। तो आज तो जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, चाहे जो भी सत्ताधारी लोग है जो राजनीति कर रहे हैं, उनका कोई मकसद जनता से जुड़ाव का नहीं है। उनका तो मकसद सिर्फ इसलिए है कि हम राजनीति में जाकर के कितना पैसा कमा ले। पहले आप देखे होंगे कि पहले के हमारे जो नेता थे, आप लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण पढ़ लीजिए, आप राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए मधु लिमये को उठा करके, आप चंद्रशेखर को भी उठा करके पढ़ लीजिए। तो ये लोग सत्ता की राजनीति नहीं किए, ये लोग त्याग की राजनीति किए, और ये लोग बहुत बड़े परिवार के नहीं थे कि राजनीति में प्रवेश कर गए और बहुत बड़े पैसा लगा करके चुनाव नहीं लड़े इन लोगों ने। ये लोग तो एकदम उसको कहा जाए कि कोई व्यवस्था नहीं थी इनके पास, फिर चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने इनको चुनाव जिता करके दिया, और जब ये सदन में पहुंचे तो एक मानक तय किए, सदन में पहुंचे तो एक दिशा उनको दिए। इनका मतलब ही था सादा जीवन, उच्च विचार। परंतु आज के लोगों का क्या हो गया है, रंगीला जीवन बना लो और विचार को खत्म कर दो। आज तो ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए कि अगर एक दिन में 3 रैली कर रहे तो 3 सदरी और 3 कुर्ते बदल रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं 1 लाख के ड्रेस पहनते हैं, और आज विपक्ष के नेताओं को भी देख लीजिए तो बिना हेलीकॉप्टर की कहीं यात्रा नहीं कर रहे, चुनाव रैलियों में हेलीकॉप्टर से जा रहे, और कार्यकर्ता बेचारा भूखे मरता है। तो इनको आज न कार्यकर्ताओं से मतलब है न किसी से मतलब है। आज आप मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, राजस्थान में चुनाव चल रहा है, और 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां देख लीजिए योगेश भाई की कितने कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। जो दल बदल करके गए हैं मध्य प्रदेश में, उनको सबसे ज्यादा टिकट मिल गया है, चाहे वो विपक्ष वाले हो और चाहे सत्ता वाले हो। जो लोग दल बदल करके गए उनको टिकट दे दिया और कार्यकर्ता बेचारे रोड पर घूम रहे। तो आज इन दलों में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है और न ही कार्यकर्ता की इज्जत देते है। ये तो कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाना चाहते है और आपस में नफरत रख करके समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनके राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना है और समाज में नफरत पैदा करना है।
जी सर, लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन का संचालन है, पर वर्तमान में जो सत्ता है और विपक्ष है, क्या एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं और क्या कारण देखते हैं सर?
पक्ष और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू तो है ही है, ये एक ही सिक्के के बने हैं योगेश भाई जी, एक ही धातु के बने हैं। आज तो आप देख लीजिए कि जो पक्ष में लोग है, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, क्या शराब माफियाओं पे इन्होंने रोक लगाया है? विपक्ष में बैठ करके कहते कि नहीं शराब माफियाओं पे हम रोक लगाएंगे, परंतु जब सत्ता में आते हैं तो शराब बेचवाने का काम करते हैं। दिल्ली में जिनकी सरकार है आप जानते होंगे उनके बारे में, अन्ना हजारे जी के शिष्य कहते हैं अपने आप को, और जब ये लोग चुनाव लड़े तो ये बोले कि नहीं जी हम तो दारू बंद करा देंगे, परंतु आज उनके तीन तीन नेता दारू के चक्कर में जेल में बंद है। और दारू की वहां पे कौन सी शराब की नीति बनी आप उठा करके पढ़ लीजिएगा। तो इनमें बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं रह गया है इनके नीतियों के आधार पर। और जो परिभाषा आपने बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, उसको ये लोग खत्म कर दिए। आज तो लोकतंत्र शराब का, शराब के द्वारा शराबियों के लिए हो गया है। आज तो लोकतंत्र उद्योग का, उद्योग के उद्योगपतियों के लिए हो गया है। आज तो लोकतंत्र माफिया का, माफियाओं के द्वारा माफियाओं के लिए हो गया है, क्योंकि यही बलात्कारी, यही माफिया, यही लूटने पटोलने वाले सारे नेता पैदा कर रहे हैं और इन्हीं के बीच से कुर्सी निकल रही, क्योंकि इनके पास पैसे है। आज कुर्सी कहाँ पे टिकी हुई योगेश भाई? आज कुर्सी पैसे वालों के पास टिकी है। तो आप देख लीजिए कि जितने धन माफिया है, जितने नाना प्रकार के माफिया है, सारे नेता उनके पास जाके नतमस्तक होते। क्यों? क्योंकि यही माफिया उनको पैसे देते है और यही चुनाव लड़ने वाले लोग करोड़ों करोड़ दस दस बीस बीस करोड़ रुपया लगा करके चुनाव लड़ते है और ये लोग चुनाव लड़ करके सदन में जाते हैं। इनके चुनाव के खर्चे पर सर्वोच्च न्यायालय चुप है, इनके चुनाव के खर्चे पे राष्ट्रपति महोदय चुप है, इनके चुनाव के खर्चे पे चुनाव आयोग चुप है, इनके चुनाव के खर्चे पे राज्यपाल बने हैं। ये जो चारों संस्थाएं हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, राष्ट्रपति हो, चुनाव आयोग हो, राज्यपाल हो, यह सभी सत्ताधारी दलों के दफ्तरी बाबू बन के काम कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए कि आप इतने पैसे कहां से लाते हो चुनाव लड़ने के लिए? ये जो पैसे आ रहे हैं यही माफियाओं से आ रहे हैं। तो ये सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनकी माफियाओं से, कारपोरेट से, पैसे वालों से, अंदर से मिली भगत है। इनके बीच में जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए कंसेप्ट नहीं है, बल्कि माफियाओं का, माफिया के द्वारा माफियाओं के लिए कंसेप्ट है। और यह लोकतंत्र को, यह संसद को, विधानसभाओं को माफियाओं की विश्राम स्थली और शरण स्थली बना दी है कि वहां पे जाके काम नहीं करते, सिर्फ ये नीति बनाते हैं कि माफियाओं को कैसे फायदा होगा, पैसे वालों को कैसे फायदा होगा, पूंजीपतियों को कैसे फायदा होगा। तो इनकी राजनीति तो एक तरीके से धनपतियों के जेब में जाकर के बैठ गई है।
जी सर, लोकतंत्र में जनता, विचारधारा, राजनीतिक वफादारी जैसे शब्दों का महत्व कैसे देखते हैं और जनता किस तरीके से इन शब्दों को समझे सर?
लोकतंत्र में जनता की वफादारी सदियों से है, चल रही है और चलती रहेगी। लोकतंत्र का आधार विचारधारा है जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। विचारधारा जो होती है वह अमर बेल होती है, कुछ दिन के लिए सुसुप्त अवस्था में चली जाती है परंतु मरती नहीं है, जैसे ही उसको खाद पानी मिलता है पनप जाती है। आज की जो राजनीति है विचारधारा के विपरीत हो रही है, इसलिए विचारधारा शांत पड़ी है। जिस दिन विचारधारा की राजनीति शुरू हो जाएगी, पुनः आप देखेंगे कि विचारधारा की राजनीति शुरू हो जाएगी और विचारधाराएं पनपने लगेगी और जनता का राज स्थापित होने लगेगा। परंतु उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जनता को है। जनता अपनी जिम्मेदारी को उठाए और जनता स्वयं इस बात को सिद्ध करे कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा होती है, इसमें माफियाओं की नहीं होती है, इसमें पैसे वालों की नहीं होती है, इसमें शराबियों की नहीं होती है, शराब वाले लाबी की नहीं होती है, बल्कि यह जनता के लिए होती है। तो अब आप जैसे, हमारे जैसे और पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं को मिलकर के एक संकल्पना तय करना चाहिए कि नहीं, हम भारत को, लोकतंत्र को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, हम भारत के लोकतंत्र को गांधी के विचारों से चलाएंगे, हम भारत के लोकतंत्र को इस प्रकार से चलाएंगे कि देश की, हमारी सदन में जाकर के कोई गरीब भी बैठ सकता है, केवल अमीरों के लिए नहीं है सदन बल्कि गरीबों के लिए है। हम देश के सदन को, हम देश के लोकतंत्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि समाज में सत्यता की स्थापना होगी, समाज में अहिंसा आएगी और उसको बदलाव के लिए जरूरी है कि जनता सत्याग्रही बने, जनता सिविल नाफरमानी के रास्ते को अपनाए और चल करके उसमें बदलाव लाए, तब जाकर के कंसेप्ट सीधा होगा कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए।
जी, तो देखिए डॉक्टर सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर राजनीतिक का आया राम और गया और राजनीतिक दल और वर्तमान परिवेश में विचारों की राजनीति इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। नमस्कार मोबाइल वाणी को सभी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई नमस्कार, कि आपने इस चुनाव के दौर में इतने ज्वलंत मुद्दे पे बात किए और इस सब समाज के सामने ला रहे कि आज दल बदलू राजनीति को किधर ले जा रहे, सत्ता और विपक्ष राजनीति को किधर ले जा रहे, इसके लिए आपको और मोबाइल वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मोबाइल सब पर होगी, धन्यवाद।